प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतुदास जी महाराज द्वारा विषय भक्ति का उद्देश्य है प्रेम, दिनांक 14 अप्रैल 2014 को दिया गया है।
देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तात्पर्य, इस साप के कारण शिव वैदिक यज्ञ की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी साप से भगवान शिव अन्य भौतिकवादी देवताओं का साथ देने की बला से बच गए, से बचे रहे। भगवान शिव श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकवादी लोगों के साथ बैठे उठे। इस प्रकार दक्ष का साप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ। हमारे समक्ष गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जाप करते थे। चूंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्ण जप में बाधा डालते, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए ही वे शौचालय के पास बैठे रहते, क्योंकि तब भौतिकवादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे। किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। निष्कर्ष यह निकला कि शिव जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकवादी लोग उनकी भक्ति में बाधक न बने। हम इससे पहले एक श्लोक भी पढ़ेंगे जिनका तात्पर्य न होते हुए ये उनके बाद का श्लोक हमने गुनगुनाया। मैत्रेय उवाच विनिद्यैवं स गिरीश प्रतिपमरस्थितं दक्षो आथाप उपस्पृश्य क्रुन्दः सप्तुं प्रचक्रमे। अनुवाद, मैत्र मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से साप देना प्रारंभ किया। और उसके बाद आज का श्लोक है, देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तो ये दक्ष प्रजापति की निज वृत्ति यहाँ दिखाई दे रही है। वैष्णव कभी भी ऐसा श्राप किसी को नहीं दे सकते। दक्ष अपना बाण भूल चुका है। हालांकि शंकर शिव भगवान महान वैष्णव है, इसलिए स्थित प्रज्ञ है और शुभ है, थरो जेंटलमैन। प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव मीन्स जेंटलमैन। हम देखते हैं यहाँ शंकर भगवान बहुत शांत हैं और उनको इतना बड़ा श्राप मिला, लेकिन उनने क्रोध नहीं किया। ससुर है, ससुर श्राप दे रहे हैं, तो शिव ने ये अंगीकार कर लिया। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्यादातर लोग देवी देवताओं का यज्ञ करते हैं ताकि उनको स्वर्ग का सुख मिले। तो ये विषय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, विषयों में हमेशा पड़े रहना। तो तात्पर्य में कहा गया कि ये कुछ भगवान की और शंकर दोनों की कुछ युक्ति ही है कि शिव को श्राप मिले कि यज्ञ का भाग उनको न मिले। अगर यज्ञ का भाग का अंगीकार करेंगे तो उनको भी उन लोगों के कर्मों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यज्ञ में भाग ही न ले। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तात्पर्य बता रहे कि ये यथा योग्य दक्ष के इसी साथ से भगवान शिव अन्य भौतिकवादी देवताओं का साथ देने की बला से बच जाए। बला का अर्थ है सब कॉम्प्लिकेटेड कर्म, गंदा इंद्रिय तृप्ति विषय, स्वर्ग में जाना आना, ये सब बला है। गता गतम काम कामा लभन्ते, जाना आना और एक काम इंद्रिय तृप्ति करना, तो ये शंकर भगवान बच गए। और बाद में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हो गए जो जिनका नाम है गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु बने। तो वो हमेशा पब्लिक टॉयलेट के पास बैठ के माला करते थे, भगवान का नाम लेते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भौतिकवादी लोग उनके पास आते थे, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा पति दे दो, पैसा दे दो, स्वर्ग दे दो वगैरह। भक्ति का उद्देश्य ये नहीं कि हमें इंद्रिय तृप्ति मिले, भक्ति का उद्देश्य है हमें कृष्ण प्रेम मिले, हमें भक्तों का प्रेम मिले, कृष्ण का प्रेम मिले, ये भक्ति का उद्देश्य। लेकिन लोग साधु महात्मा के पास जाते हैं क्यों? ताकि उनको कुछ भौतिक लाभ हो जाए। तो शंकर भगवान इससे बच गए। हालांकि शंकर भगवान का गुण है आशुतोष, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाखुश हो जाते हैं। और ज्यादातर शंकर भगवान के भक्त राक्षस लोग होते हैं, राक्षस लोग, क्योंकि शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होके वरदान दे देते हैं। शंकर भगवान ये नहीं देखते कि इनके हित में ये वरदान होगा कि नहीं, उनका हित होगा या हित वो नहीं देखते। विष्णु कृष्ण ये देखते हैं कि ये भक्त के इंटरेस्ट में है कि नहीं, भक्त का कल्याण होगा कि नहीं, तभी देंगे। तो ज्यादातर रावण हमने देखा है, बाणासुर, सब राक्षस है, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के भक्त। सो देवी देवताओं के भक्त ज्यादातर राक्षस ही होते। अगर राक्षस नहीं मनुष्य है तो मनुष्य भी राक्षस, मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं, क्योंकि उनको चारों नियम का भंग करना, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। राक्षस लोग मीन्स अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में हमेशा प्रवृत्त रहना, ये राक्षस लोग है। कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना उनको बोलते हैं प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धारे कामना, हमारी इंद्रियों की तृप्ति करना उसको काम कहते हैं। तो शंकर भगवान के भक्त ज्यादातर राक्षस लोग होते हैं, आशुतोष, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ। तो शंकर भगवान ये सबसे श्रेष्ठ नंबर वन वैष्णव है, इसलिए हमें शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, मान देना चाहिए, हमसे ऊंचे हैं। लेकिन पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं, पूजा करनी है तो एक ही, वो है कृष्ण। आराध्यो भगवान व्रजे सतनया तद धाम वृंदावन। अगर आराधना करनी है तो एक ही, वो है कृष्ण व्रजे सतनया, क्योंकि कृष्ण ही हमें हमारा हमारा लाभ, हमारा कल्याण जो है उसके मुताबिक ज्यादातर उनका प्रेम देंगे कृष्ण, और वो प्रेम में सब कुछ है। तो ये भेद है कि देवी देवताओं की उपासना भगवत गीता में भगवान खंडन करते हैं। देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि देवी देवताएं हमें इंद्रिय तृप्ति का वरदान देते हैं, स्वर्ग का वरदान देते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तदभवति अल्पमेषां, देव यदो यान्ति यान्ति मध्याजिनोति मा। अंतवत्तु फलम तेषां, देवों से दिया हुआ जो वरदान है वो अंत वत्तु है, और ज्यादातर इंद्रिय तृप्ति देवी देवता है वही वरदान देते, मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद मुक्त नहीं है, खुद विषयों में फंसे हैं। इसलिए देवी देवताएं का यजन पूजन वर्जित है। जैसे नंद महाराज और सब ग्वाल मित्रों ने इंद्र पूजा शुरू की, तो इंद्र देव है और वो बारिश वर्षा करता है, और वर्षा से घास धन धान्य और उससे सबका निर्वाह होता है, स्पेशली वैश्यों का। तो इंद्र नंद महाराज इंद्र की पूजा करने लगे, तो भगवान उनको रोकते हैं और उनको कर्म मीमांसा और अदर अदर दूसरी दूसरी फिलोसॉफी देते हैं, और बाद में कहते हैं हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, गोवर्धन ही मेरा स्वरूप है और गोवर्धन ही हमें सब कुछ देते हैं, नई घास फल फूल पत्ते, गायें चरती हैं, हमारा भरण पोषण होता है वगैरह कृष्ण। और नंद महाराज को इंद्र की पूजा करने से रोका, और बाद में खुद गोवर्धन बन जाते। विष्णु पूजा करनी चाहिए, और ब्रह्मा भी आए, ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान को भगवान नहीं मानता था, मानते थे तो बछड़े चुरा लिए, और बाद में प्रूव किया कि वे देवता देवी देवताएं की उपासना करते हुए मेरी उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। तो ये श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का निचोड़ है कि हमें श्री कृष्ण की ही सेवा पूजा अर्चन करना चाहिए और देवी देवताओं को सम्मान देना चाहिए। लेकिन पूजा का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंद्रिया जितनी भी आप तृप्त करोगे इतना ज्यादा मांगेगी। कामादि न कतिदा कतिदा दुर्निर्देशम जातु मई न करुणा, मैंने इन इंद्रियों की तृप्ति जन्म जन्मांतर की और अभी तक मुझे ये इंद्रियां थैंक यू नहीं कह रही कि आपने मेरी बहुत सेवा की, अभी मैं तृप्त हूं। आपके ऊपर प्रसन्न हो। थैंक यू वेरी मच। इंद्रियां कभी भी हमें थैंक यू नहीं कहती। दुष्परे न अनलेना छ, दुष्परे न अनलेना छ। इज बर्निंग लाइक फायर इंद्रियां हमारी, मोर 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 इंद्रिय सुख ज्यादा। तो पांच इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय कौन जानते, हाथ खड़ा कीजिए तो इधर, पांच ज्ञान इंद्रिय कौन जानते हैं? ठीक है, पांच ज्ञान इंद्रिय है आंख कान नाक जीभ त्वचा, और उनको इनकी आप विषय देना, उनको बोलते हैं विषय सुख। अर्थात कान को शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय है। तो इंद्रियों को ये विषय देना, इंद्रियों को तृप्त करना, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। दुष्परिण अनलचन, अग्नि अनल, अग्नि में आप फ्यूल डालो तो वो शांत नहीं होगा, वो शांत नहीं हो सकता, ज्यादा बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा। उसी तरह ये इंद्रियां जितना हम देंगे विषय सुख, उतना मोर मोर ज्यादा ज्यादा ज्यादा। कामादि न कतिना कतिता दुर्निदेशम। भगवद गीता में कहते हैं भगवान के इंद्रियां हमें पांच डिरेक्शन में हमें पुल करती है। जैसे एक घोड़ा गाड़ी हो, पांच घोड़े हो, और पांच घोड़े पांच दिशा में घोड़ा गाड़ी को पुल करें तो घोड़ा गाड़ी का क्या हाल होगा। उसी तरह हमारी ये पांच इंद्रियां हमें पांच दिशा में खींचे तो हमारा क्या हाल होगा। और ये इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं, कभी भी तृप्त नहीं होती। जितना इंद्रियों को सुख दोगे इतना ज्यादा मांगेगी। इसलिए योगा इंद्रिय संयमम, योग का अर्थ है इंद्रियों को संयम में रखना, इंद्रिय को काबू में रखना, मन को काबू में रखना, ये योग का अर्थ है। नहीं कि इंद्रियों को बेफाम चलाते रहो और इंद्रियां मांगती रहे और हम उनका भरण पोषण करते रहे, और कभी भी अंत नहीं आएगा, कभी भी अंत नहीं आएगा। मरण काल तक विषय सुख में मन फंसा रहेगा। प्रभुपाद जी एक फेमस स्टोरी कहते हैं कि अकबर बीरबल को पूछता है कि काम सुख कब तक रहता है, लस्ट कब तक रहता है, आखिरी बुढ़ापे में चले जाना चाहिए, और चला जाता। बीरबल कहता है नहीं, ये आखिरी सांस तक रहता है। मैं आपको बताऊंगा, तो 10-15 दिन के बाद देखा एक बूढ़ा मरण पथारी में पड़ा है, मरने जा रहा है, उनका मृत्यु होने वाला है। और बीरबल अकबर को कहता है आपकी सुंदर नौजवान पुत्री है तो उनको साथ ले, हमें कहीं जाना है। तो अकबर ने ले लिया उनकी पुत्री साथ, और तीनों ये मर रहा था वो बूढ़े के पास गए। तो बूढ़ा राजा धीराज, इतना बड़ा इंडिया का राजा, कितना ऐश्वर्यशाली, कोई भी आशा, कोई भी अट्रैक्ट राजा की ओर कोई भी आशा, कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है राजा की ओर, राजा है राजा अकबर वो मेरे घर। लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा वहां से हटी नहीं, उनकी जो पुत्री थी नौजवान सुंदर लड़की, वहां से वो नजर नहीं हटा रहा, मरने जा रहा, मर रहा। तो बीरबल अकबर को कहता है देखा आप इतने महान राजा व्यक्ति ऑपुलेंट, और वो आपकी पुत्री की ओर, आपकी ओर देखा ही नहीं, आपकी ओर उन्हें पलक भी नहीं भरी, तो ये काम कभी भी नष्ट होने वाला नहीं। हमें श्री कृष्ण की भक्ति से इनको नष्ट करना होगा। दुष्परिणाम लक्ष्य भगवान कहते असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, इनको अनासक्ति रूपी शस्त्र से काटना होगा। तो ये एक काम इंद्रिय तृप्ति और यह हमें नचाती है, हमें बंदी बनाती है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को वश करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उसको बोलते हैं योग। कृष्ण कहते हैं जहां जहां इंद्रियां चलने जाती हैं वहां से उनको वापस बुलाओ और उनको काबू में रखो, उनको बोलते हैं सम दम, इंद्रियों का दमन, मन का समन। वहां से अष्टांग योग शुरू होता है, समो दम आसन वगैरह अष्टांग योग। तो हमें इंद्रियों को बराबर काबू में रखना चाहिए। दक्ष प्रजापति ये हम देख रहे हैं कि उनकी इंद्रियां बेफाम चल रही है, कोई उनके काबू में नहीं है, उनका अहंकार स्काई तक बादलों तक पहुंच गए। और यहाँ शंकर भगवान जैसे महान शक्तिमान और महान व्यक्ति और दामाद भी उनको श्राप दे रहे कि इनको यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। सब देवी देवताओं को, इंद्र को मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन शिव को नहीं मिलना चाहिए। तो ये है श्राप जो दक्ष के पतन का कारण हुआ। दक्ष के पतन का कारण, दक्ष का वीरभद्र वगैरह भूत पिशाच सब आए और इनका गला काट दिया। बाद में भृगु मुनि का भी दाढ़ी चली गई, क्योंकि भृगु मुनि ने रॉन्ग साइड ली, दक्ष प्रजापति की साइड ली, वैष्णव अपराध किया। तो वैष्णव अपराध से दक्ष का सर चला गया और वैष्णव अपराध से भृगु की दाढ़ी चली गई। ये ब्राह्मणों का बाल काट लेना, मुनि का दाढ़ी काट लेना, ये बहुत बड़ा अपमान है, मरण तुल्य है। तो वैष्णव का अपराध ये बहुत सीवियर अपराध है, स्वप्न में भी वैष्णव का अपराध नहीं होना चाहिए। और देवी देवता है वैष्णव है, देवी देवता की डेफिनेशन है विष्णु भक्त भवे देव, विष्णु के भक्त देवता है। और असुरों की राक्षसों की परिभाषा है विष्णु भक्त भवे देव असुरियो से विपर्जय, और जो देव देवताओं से उल्टे हैं उनको असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। तो जो भी नास्तिक है राक्षस है, जो भी कृष्ण के भक्त है विष्णु भक्त भवे देव, वो विष्णु के कृष्ण के भक्त को देवी देवता है कहते हैं। तो ये देवी देवताएं वैष्णव वगैरह जो भगवान के भक्त हैं उनका कभी भी अपराध स्वप्नों में भी ना हो, नहीं तो वो अपराध से आप कभी बचोगे नहीं। इसका कारण क्या है कि भगवान को भक्त प्रिय है, वैष्णव प्रिय है, और वो प्रिय भक्तों का जब कोई अपराध करता है तो भगवान खुद अपराध ले लेता है। जैसे एक माता हो और उनका बच्चा हो, माता के बच्चे का आपने अपराध किया, चाहे बच्चा आपको माफ कर दे लेकिन माता आपको माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। उसी तरह भक्त हमारा अपराध माफ कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं माफ करेंगे। इसलिए भक्तों का अपराध करना बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, उसमें हमारा पतन निश्चित है। दक्ष प्रजापति का पतन हुआ, और कईयों का अमरीश महाराज के आख्यान में दुर्वासा मुनि का पतन हुआ, अमरीश महाराज के पास वापस लौटना पड़ा, भगवान ने भी माफ नहीं किया। तो वैष्णवों का अपराध स्वप्नों में भी न हो। तो यहाँ दक्ष प्रजापति शिव भगवान का अपराध किया, उनको श्राप देके, और श्राप क्या है कि अभद्र है और उनको यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए, तो अपराध किया वैष्णव का, इसलिए उनका पतन हुआ। कोई सवाल?
जब यज्ञ करते हैं फिर शिव जी का मंत्र नहीं पढ़ते तो वैद्य का भाग अभी भी दिया जाता है कि नहीं?
अभी भी करते हैं, शंकर को भाग नहीं मिलता,
श्राप मिला है।
चाहे यज्ञ करे, शंकर को आहुति भी दे, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि दक्ष का श्राप।
मतलब वो तो परम वैष्णव है भगवान शिव, उनके उनने ऐसा अपराध किया लेकिन फिर भी उनका श्राप वही है, मतलब होता है, माना जाता है, सक्सेसफुल क्यों हुआ?
क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया, शिव भगवान ने एक्सेप्ट किया, ठीक है मुझे नहीं चाहिए और मैं भौतिकवादी यज्ञों से मैं बच जाऊंगा। वैष्णव है, परम वैष्णव है, वो सबका अपराध माफ कर देते हैं, है ना? वैष्णव अपराध माफ कर देते हैं। अमरीश महाराज ने भी अपराध माफ कर दिया, पांडवों ने भी कौरवों का अपराध माफ कर दिया, लेकिन भगवान माफ नहीं करते, भगवान नहीं माफ। तो शंकर भगवान महान वैष्णव है, तो श्राप स्वीकार कर लिया क्या?
शंकर भगवान
पुत्र
है, उनका पहले पूजा क्यों होता है?
गणेश का पूजा पहले क्यों होती है? तो ये वरदान था, विष्णु भगवान ने गणेश को वरदान दिया कि कोई भी अच्छा शुभ कार्य करने से पहले ये शुभ कार्य से सारे सारे विघ्न विनाश करने के लिए पहले आपका पूजन यजन होगा। ते विष्णु कृष्ण भगवान ने गणेश को वरदान दिया, इसलिए उनका यजन पूजन होता है, अशुभ ना है इसलिए। लेकिन वैष्णव के जीवन में कुछ अशुभ आता है नहीं, इसलिए वैष्णव गणेश की पूजा न करते हुए विष्णु तो गणेश की पूजा न करते हुए विश्वक्षेन की पूजा करते हैं, अदर रूप भगवान का कृष्ण का विश्वक्षेन, तो उनको वरदान मिला इसलिए। तो भौतिक लोग भौतिक यज्ञ संपन्न करने के लिए उनमें विघ्न न आए इसलिए गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन वैष्णवों को कोई शुभ अशुभ की चिंता नहीं, शुभ अशुभ कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण सेवा मिले, कृष्ण का सानिध्य मिले, भक्तों का सानिध्य मिले, तो इसलिए वैष्णव इस झंझट में नहीं पड़ते। और शिव जी का शादी हुआ था तो गणेश पूजा होगी, तो ये सब अनादि तत्व है ना। पुत्र जैसे ब्रह्मा की प्रकृति से शिव निकलते हैं, है ना? तो शिव को ब्रह्मा के पुत्र कह गए, लेकिन शिव अनादि तत्व है, न जन्म न मृत्यु। तो वैसे इसी तरह कई जो देवी देवताएं हैं वो सनातन तत्व है। कब?
जब पहले वो भूल गए थे, एक बार वो गणेश
हो सकता है, हो सकता है, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपना एग्जाम्पल से हट करते हैं। भक्तों की पूजा करते हैं। देवी देवताएं मैंने परिभाषा कही, भगवान विष्णु के कृष्ण के देवी देवताएं भक्त है, वैष्णव है। तो कभी कभी भगवान भी भक्तों की सेवा करते पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं भागवत में, मद भक्त पूजा अभ्य अधिकार। भागवत में कहते हैं भगवान, मेरे से मेरे भक्त की पूजा और अधिक है। आराधनाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनाम परम तस्मत् परतरम देवी त्वदीया नाम समाचर। सब आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना कृष्ण की है, विष्णु की है, और उससे भी पर आराधना, ऊंची आराधना उनके त्वदीया मीन्स उनके गंगा जमुना तुलसी महारानी भागवत ग्रंथ भागवत परसन भागवत ये उनके त्वदीया है, कृष्ण के उनकी पूजा श्रेष्ठ है। तो भगवान भक्तों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चन करते हैं, कभी कभी दिखाई दे रहा है। वो खुद भी कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं भगवत गीता में, ये यथामान प्रपद्यन्ते स्थाम तथैव भजामि अहम्। जो मुझे जो भाव से भजता है उनका मैं वो भाव से भजन करता हूँ। तो भगवान भक्तों को भजते हैं, भक्त भगवान को भजते हैं। भगवान कम या ज्यादा भक्ते हैं भक्तों के भजते हैं, कम भजते हैं, लेकिन भक्त 24 घंटा भगवान को भजता है। और कोई सवाल?
Yes. राम जी ने तोड़ा, ये कन्या चार कैसे आ गए?
कन्या चार ब्याही, हाँ, तो उसमें हमारा क्या बिगड़ा? कन्याओं का कल्याण हुआ, और वो भी विष्णु तत्व थे, भरत महाराज शत्रुघ्न सब विष्णु तत्व थे, राम है ना, तो कल्याण हुआ। जनक महाराज की मर्जी, हमारी मर्जी से क्या चलेगा? जनक महाराज ने उर्मिला लक्ष्मण को दी वगैरह, तो उनके मर्जी, उनके मर्जी। और कोई सवाल?
महाराज कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब राम जी युद्ध लड़ने जा रहे थे रावण से, तो उन्होंने शिव जी और शक्ति की पूजा की, तो महाराज उसमें भी क्या यही कहना चाहिए कि वो भगवान है, वो कर सकते?
यही जवाब है। भगवान इसलिए कि भगवान को ताकत चाहिए थी, विजय चाहिए था, ये चाहिए था, वो था, वो एग्जाम्पल से आप कर रहे हैं कि ये भगवान भक्तों की भी पूजा करते हैं। सुदामा के चरण पखाड़े, तो क्या सुदामा उनसे बड़े थे? गाय की पूजा की भगवान कृष्ण ने, तो गाय भगवान से ऊपर हो गई, भगवान थी। भगवान ने गायों की पूजा की गोपाष्टमी के दिन, तो गाय भगवान से ऊपर हो गए। भगवान भी भक्तों का, भगवान समाधि करते हैं अपने ऊपर करते हैं, हर रोज 3:30 बजे कृष्ण भगवान उठ जाते हैं और अपने आप में समाधि लगाते हैं। अर्थात बग स्टॉप एट कृष्ण, एवरीथिंग स्टॉप्स एट कृष्ण। भगवान कृष्णा जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। भक्तों की सेवा करे, करना है तो ना भी करे, भक्त उनकी करते रहेंगे, लेकिन वो करना चाहते तो करे। हम उनको कैसे कहेंगे आप शिव जी की पूजा मत करो, हम कैसे कहेंगे? शंकर भगवान परम वैष्णव परम भक्त है, उनकी क्यों पूजा नहीं करेंगे? भगवान कृष्ण राम विष्णु, लेकिन भगवान एक है, वो है विष्णु कृष्ण राम, एक ही तत्व है विष्णु तत्व। कृष्ण ही ओरिजिनल भगवान है, एक भगवान, और वो है कृष्ण। बाकी के सब उनके अवतार हैं, या उनके भक्त हैं, या राक्षस हैं, या प्रजा है, वही सबका स्रोत, वही सबका स्रोत।
कृष्ण कृष्ण के समान कोई नहीं है और कृष्ण के
ऊपर नहीं। हाँ, असम ऊर्ध्व, कृष्ण के बराबर कोई नहीं, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं, असम ऊर्ध्व। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उनको कोई कार्य नहीं, कृष्ण को कोई काम नहीं, लेकिन काम अपने आप में पैदा कर लेते, उनका कोई कार्य नहीं। एक कार्य गोपियों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ अपनी लीला, हमेशा लीला का अर्थ है खुद आनंद प्रमोद करना और दूसरों को करवाना, लीला की परिभाषा, खुद आनंद करना और दूसरों को करवाना, गोपियों को, ग्वालों को, गायों को, माता पिता को आनंद करवाना, आनंद देना और आनंद लेना, लीला करना, यही कृष्ण का एकमात्र काम है।
रामायण
लिखा
है, रामायण
ये कह रहे कि पग के बिना चलते हैं और निराकार स्वरूप, तो ये समझने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा कि अपानी पादो जवनो ग्रहिता, भगवान के हाथ नहीं है फिर भी दूर से वो पकड़ के ला सकते हैं, भगवान के पाँव नहीं लेकिन तेजी से चलने वालों से भी ज्यादा तेजी चल सकते हैं। अपानी पादो, पाद भी नहीं है, जवनो ग्रहिता, भागते हैं भगवान, तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेयो जिज्ञासु उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तो ये भेद भगवान साकार निराकार, स्वगत भेद, स्वगत भेद, ये सब समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, तभी ये शास्त्रों का, शास्त्रों में कहा है भगवान निराकार भी है भगवान साकार भी है, तो सही है दोनों, लेकिन उनको समझना पड़ेगा तो निराकार कैसे है साकार कैसे है, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, गुरु के पास। तद विज्ञार्थम स गुरु एवं अभिगच्छेत शब्दे परे च निष्णातम। हाँ, तो समझ में आया आपको, भगवान निराकार भी है साकार भी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दोनों है, अचिंत इनकॉन्सीवेबल, खोपड़ी में जल्दी आएगा नहीं, साइमल्टेनियस एक साथ भगवान साकार भी है निराकार भी, अचिंत भेद अभेद, भेद जीवों के, जीवों के साथ उनका भेद नहीं है निराकार स्वरूप, और जीवों के साथ उनका भेद है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो समझने के लिए गुरु पास जाना पड़ेगा, ग्रंथ में गड़बड़ है लेकिन गड़बड़ सच्ची है, वो गड़बड़ समझने के लिए शिक्षक गुरु के पास जाना पड़ेगा।
कौशल्या माता को पता था कि उनके घर में भगवान आए हैं, तो जानते थे कि मतलब मेरे घर भगवान आया, लेकिन ये कहीं नहीं ऐसा कैसा क्यों किया कि उसको बनवास मिला।
तो आप तो रामायण जानते हो, कैकेयी के कान फूके, कैकेयी के कान मंत्रा है ना, और वो मंत्रा की बातों में आ गई है ना, मंत्रा की बातों में आ गई, तो भगवान, भगवान को लीला भी करनी थी, जंगल में जाके ऋषि मुनियों को मिलना था और जंगल में जाके ब्राह्मणों का यज्ञ भी संपन्न वगैरह, कई कई लीलाएं करनी थी, तो निमित्त बनाया, ये भक्तों को समझ में आ सकता, भक्त बनो तो भगवान की लीलाएं आपको समझ में आएगी।
राम को पता देना कि राम भगवान आ गए फिर हल्दी सीता माता को हरण किया, तू जान
देखो जी, ये सब लीला भगवान रामचंद्र की लीला, तो उनमें, उनमें कुछ ऐसी बुद्धि मत लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, अगर बुद्धि लगानी है तो गुरु के पास जाओ और समझो, लेकिन ज्यादातर भगवान की लीलाओं में भगवान चाहते हैं, इसलिए ये हो रहा है, उनकी लीला का विस्तार करने के लिए हो रहा है, ये समझना चाहिए। ये समझना चाहिए। नास्तिक लोग कहते हैं कि न जानू जानकी नाथ काल क्या कल क्या होने वाला है, जानकी नाथ ने जाना नहीं कि कल क्या होने वाला, उनका मुकुट उनको नहीं मिलेगा और जंगल जाना पड़ेगा। जानकी नाथ जानते थे, सब कुछ जानते थे। रामायण तो रामचंद्र से पहले लिखी गई थी, रामचंद्र आए उनसे पहले रामायण लिखी गई थी। तो कैसे लिखी गई? क्योंकि भगवान की लीला होने वाली ही थी और भगवान ये लीला करने वाले थे, बाद में उनके प्रश्न उठता ही नहीं, होना था ही। भगवान को ये लीला करनी थी इसलिए सब हुआ। ये परम भाव जानना पड़ेगा, परम भाव में जानंतो मम भूत महेश्वर, कि भगवान की लीलाएं सेट होती है, सब कुछ सेट। भगवान क्या करने आएंगे, भगवान क्या क्या करेंगे, सब कुछ सेट होता है जब भी आते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो सब कुछ सेट होता है कि अपसेट वहां करके मैनेजमेंट, वहां जाके उनके कपड़े कौन धोएंगे, खाएंगे कौन, मीटिंग कहाँ होगी, कौन सा हॉल होगा, ये सब वहां प्राइम मिनिस्टर जाएगा तब सब कुछ सेट होता है। कितना पहले से होता है? महीनों पहले से होता है। तो ये तो राजा धीराज के भगवान खुद और उनके मैनेजर, और ये सब कुछ पहले से सेट होता है भगवान क्या करें। इसलिए कहते हैं कि योग माया समावृता, मैं योग माया से के पर्दे में मैं ढक जाता हूँ, अर्थात मैं माया में चला जाता हूँ। जैसे मनुष्य माया में होता है वैसे भगवान माया में चले जाते हैं। क्यों? कि लीला संपन्न हो, नहीं तो सब समझेंगे भगवान है, सब लोग डरेंगे और भगवान को जो आनंद लूटना है वो भी नहीं हो लूट सकेंगे, गोपियों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ। तो भगवान भी योग माया से आवृत होते हैं खुद, ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती से योग माया पकड़ती है जैसे हमें पकड़ती है माया, ऐसा नहीं है। वो योग माया में खुद योग माया को वो ऑर्डर करते हैं। योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। तो भगवान की मर्जी योग माया में अंदर आना है तो वो भगवान की मर्जी आए। क्यों आए? कि अगर योग माया से अंदर में नहीं आए तो जसोदा मैया कन्हैया कानुआ कानुआ नहीं बोलेगी, भगवान ईश्वर परमेश्वर क्या करूं कैसे करूं आपकी सेवा, सारी लीला चौपट हो जाए। ये छड़ी से भगवान के पीछे भागना बांधना और भगवान रोना, भगवान रोते हैं, भगवान है। बाहर से रोते हैं, अंदर से आनंद, अंदर से आनंद कर रहे, अंदर से भक्तों के साथ आनंद। तो भगवान की मर्जी योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, मूढ़ जानते नहीं योग माया समावृता। इसलिए गोलोक वृंदावन ये मधुर माधुर्य धाम है, मधुरता, और मधुरता में भगवान योग, वहाँ योग माया का प्रभाव ज्यादा है तो वहाँ के सब गोप गोपी माता पिता सब योग माया से आवृत होते, भगवान भी अपनी भगवत्ता वहाँ भूल जाते हैं ताकि वहाँ अपनी लीलाएं संपल करें, हमारे भक्तों के साथ वो इंटरैक्शन, भक्तों के साथ वो अपनी प्रेम की आदान, प्रेम का आदान प्रदान करें। अगर भक्त लोग ऑन रेवरेंस में रहेंगे योग माया के बिना, भगवान है भगवान है भगवान, हाहाकार मच जाएगा और भक्त और भगवान का प्रेम का आदान प्रदान चौपट हो जाएगा। इसलिए योग माया से तो गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य सारा आवृत है, आवृत ऐश्वर्य दब जाता है माधुर्य से, मधुरता से ऐश्वर्य दब जाता और भगवान और भक्त योग माया से मान लेता, योग माया का वो आश्रय लेते।
जी
जी
हाँ,
वही व्यासदेव अजर अमर है और व्यासदेव पोस्ट है, व्यास बदलते रहते हैं, ते सनातन पोस्ट है। हमारे कृष्ण द्वापर व्यास है, हमारे ये जो व्यास हैं अभी, हमारे व्यास जो अभी भी व्यासदेव है, तो कृष्ण द्वापर व्यास, बादरी बादरायण व्यास, बद्री के जंगल में व्यास रहते, तो व्यासदेव पोस्ट। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।